नमस्कार भारत, 11 मई शनिवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। प्रवासियों को ले जा रही नाव ट्यूनीशिया के नजदीक समुद्र में पलटी, 65 की मौत। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के सिख विरोधी दंगों पर दिए बयान पर राजनीति तेज।
84 के दंगों के बारे में कहा, दंगा हुआ तो हुआ। आपको पता है ये नेता गांधी परिवार के सबसे करीबी है।
सुनवाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से खास बातचीत।
मैं भी उसमें 10 साल रहा हूं, मैं तो हिंदुस्तान की फौज को सर्विस किया, मोदी की फौज में तो नहीं मैं सर्विस की। ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी को।
होगी विनायक दामोदर सावरकर पर विवेचना और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव भूमध्य सागर में ट्यूनीशिया के नज़दीक पलट गई, जिसमें कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई। ये प्रवासी गुरुवार को लीबिया से चले थे। ट्यूनीशिया के सरकारी मीडिया ने बताया है कि इस दुर्घटना में 16 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। अमरीका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने 2 जंगी जहाज़ों को मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है। USS अर्लिंगटन, जिससे समुद्र में चलने वाले वाहन और एयरक्राफ्ट ले जाए जाते हैं, पहले से ही मध्य पूर्व की तरफ भेजा जा चुका था। अब एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी उस ओर रवाना किया जा रहा है, ताकि अमरीकी सेना पर होने वाले किसी भी संभावित हमले का जवाब दिया जा सके। वेनेजुएला की सरकार ने ब्राज़ील और अरूबा के डच आइलैंड से लगने वाली सीमाओं को दोबारा खोलने की बात कही है। इन सीमाओं को फरवरी में बंद कर दिया गया था, ताकि विपक्षी नेता ख्वान ग्वाइदो विदेशी सहायता सामग्री को देश के भीतर ना मंगवा सकें। वेनेजुएला के उद्योग और राष्ट्रीय उत्पाद मंत्री टारेक अल असामी ने बताया कि कोलंबिया से लगने वाली सीमा को बंद ही रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा,
De nuevo restablecidas las fronteras con Brasil y con Aruba.
ब्राज़ील और अरूबा से लगने वाली सीमाओं को दोबारा खोला जाएगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी सीमाएं तब तक बंद रहेंगी जब तक देश में हालात सामान्य नहीं हो जाते। बाहरी सीमाओं से ऐसे लोग देश में प्रवेश कर सकते हैं जो यहां के हालात को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। ये थे वेनेजुएला के उद्योग मंत्री के शब्द। श्रीलंका सरकार ने घोषणा की है कि अब देश में मौजूद सभी मस्जिदों में जो उपदेश सुनाए जाते हैं, उनकी एक कॉपी सरकार के पास जमा करवानी होगी। एक इस कदम का मकसद श्रीलंका में फैले इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करना बताया गया है। मुस्लिम धर्म और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मस्जिदों का इस्तेमाल कट्टरपंथ फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। लगभग 3 हफ्ते पहले ईस्टर के दिन श्रीलंका में हुए बम धमाकों में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इन धमाकों के हमलावर इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े हुए बताए गए थे। श्रीलंका में अभी भी आपातकाल जारी है। हालांकि श्रीलंकाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल महेश सेनानायके ने कहा है कि लोग अब अपना सामान्य जीवन शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा,
We don't have to worry about Srilankan situation. It is controllable. It is contained.
श्रीलंका के हालात के बारे में अब अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां के हालात अब काबू में हैं। हमने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया है। हम पता लगा रहे हैं कि ये लोग कितने ताकतवर हैं, इनके पास किस श्रेणी के हथियार हैं। ये सब पता करना सेना की जिम्मेदारी है, इसलिए सेना प्रमुख होने के नाते मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि वे अपना रोज़मर्रा का काम शुरू कर सकते हैं। ये थे श्रीलंका के सेना प्रमुख महेश सेनानायके के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन में मौजूद हूती विद्रोही देश के 3 प्रमुख बंदरगाहों से अपना कब्जा हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। इन तीनों बंदरगाहों से यमन में सबसे अधिक सप्लाई की जाती है। दिसंबर में हुए संघर्ष विराम के बाद शांति की तरफ बढ़ने का ये पहला अहम कदम है। संयुक्त राष्ट्र के जनरल माइकल लॉयसगार्ड इस पूरे समझौते पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 4 दिन में हूती विद्रोही होदेदा, सलीफ और रास इस्सा बंदरगाहों से अपना कब्जा हटा लेंगे। अर्जेंटीना की पुलिस ने एक राजनेता और एक सरकारी कर्मचारी पर गोली चलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को ब्यूनो एरिस में कांग्रेस बिल्डिंग के बाहर राजनेता हेक्टर ओलिवरस और सरकारी कर्मचारी मिगुल यदोन पर गोली मारी गई थी। इस हमले में मिगुल की मौत हो गई, जबकि हेक्टर अभी अस्पताल में है। अर्जेंटीना ने बताया कि इस हमले के केंद्र में मिगुल यदोन ही थे, जिनकी मौत हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप की ओर जाते हुए मारे जाने की दर्दनाक घटना एक बार फिर हुई है। भूमध्य सागर में ट्यूनीशिया के नजदीक प्रवासियों से भरी एक नाव डूब गई है, जिसमें कम से कम 65 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस घटना की पूरी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन नेगी मौजूद हैं। नवीन, क्या ताज़ा जानकारी है इस मामले पर?
जी शाहिद, भूमध्य सागर में प्रवासियों को ले जा रही एक नाव जिसके डूब जाने की वजह से कम 65 लोगों के मारे जाने की खबर है। और संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी ने यह बताया है। उनके मुताबिक ये नाव ट्यूनीशिया के नज़दीक समुद्र में डूब गई। UNHCR की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया है कि इस दुर्घटना में अभी तक 16 लोगों को बचाया जा चुका है और जीवित बचे लोग जो है वो गुरुवार को लीबिया से नाव चली थी, उसमें सवार हुए थे और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उस नाव में सवार थे, जिस वजह से समुद्र की जो तेज़ लहरें हैं उसको ये संभाल नहीं सकी नाव और ये पलट गई नाव बीच समुद्र में।
नवीन, अब तक देखा जाता रहा है कि इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं जब नाव में काफ़ी लोग सवार होकर यूरोप की ओर जाते रहे हैं, लेकिन हाल में प्रवासियों का यूरोप की ओर जाना कम भी हुआ है।
जी बिल्कुल, ऐसी रिपोर्टें हैं, संयुक्त राष्ट्र की ऐसी रिपोर्टें हैं कि इसमें कमी आई है। तो इसकी वजह यह है कि इटली की ओर से लीबियाई सेना को निर्देश दिए गए थे कि वे जो है लीबिया अपने तट से प्रवासियों को ना जाने दें, इस पर रोक लगाई गई थी। और इस इटली की नीति की जो है दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इसकी काफ़ी आलोचना भी की।
शुक्रिया नवीन इस ताज़ा जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा के 1984 के सिख विरोधी दंगों पर दिए गए बयान पर विवाद हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पित्रोदा से अपने बयान पर माफी मांगने के लिए कहा है। इस बयान पर पित्रोदा ने माफी भी मांग ली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस पर राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। सुनिए हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी की ये रिपोर्ट।
झूठ बोलते रहते हैं रोज यार, आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का, बात तो करिए आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए, 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सलाहकार सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर ये विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने उसे हाथों हाथ लपक लिया। अपनी रैलियों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निशाना साध रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार पित्रोदा के इस बयान को गांधी परिवार पर निशाना साधने की वजह बना लिया। एक रैली में उन्होंने कहा,
84 के दंगों के बारे में कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ, आपको पता है ये नेता कौन है? ये नेता गांधी परिवार के सबसे करीबी है, ये नेता गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार है, ये नेता राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त और आज के जो कांग्रेस के नामदार अध्यक्ष हैं उनके वो गुरु है।
1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिख सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। इसकी प्रतिक्रिया में सिख विरोधी दंगे हुए थे, जिनमें बड़े पैमाने पर सिखों को निशाना बनाया गया था। तब राजीव गांधी का यह बयान भी विवादों में रहा था।
कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 1984 दंगों के लिए कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है। ऐसे में सैम पित्रोदा का यह बयान बीजेपी के लिए दंगों पर राजनीति करने का एक और मौका बन गया और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कल छठे चरण में हरियाणा और पंजाब समेत देश की 59 सीटों पर मतदान होना है। सिख विरोधी दंगे सिखों के लिए भावनात्मक मुद्दा है, ऐसे में पित्रोदा का यह बयान कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया है और पित्रोदा ने भी माफी मांगते हुए सफाई दी है। पित्रोदा कह रहे हैं कि कमजोर हिंदी की वजह से उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा वो अब एक मुद्दा बन गया है और उसमें बेरोजगारी, नोटबंदी और किसानों के मुद्दे दब से गए हैं। पित्रोदा का ये सेल्फ कॉल कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा ये देखने की बात होगी। कमलेश मठेनी, बीबीसी दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने कल बिहार में नियोजित शिक्षकों यानी शिक्षा मित्रों को एक बड़ा झटका दिया। शिक्षा मित्रों की मांग थी कि उन्हें सरकारी शिक्षकों की तरह वेतन दिया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले में कहा गया है कि राज्य सरकार के लिए इतना वेतन देना संभव नहीं है। इस फैसले के बाद पूर्वी चंपारण में कुछ ऐसे ही शिक्षा मित्रों से बात की बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार ने।
फैसले से तो हम लोग हतप्रभ हैं। हम लोगों की पूरी उम्मीद थी, चूंकि 7 महीने के बाद जजमेंट हम लोगों को मिला, कि सुनवाई के दौरान भी जो हम लोगों को फीडबैक मिलता रहा कोर्ट के द्वारा, हम लोगों को पूरा लगा कि नहीं, निश्चित रूप से जजमेंट हम लोगों के पक्ष में आएगा। बट आज जो डिसीजन हम लोगों ने सुना, तो डिसीजन की कॉपी हम लोग नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन हम लोगों को मिला कि हम लोगों के SLP को खारिज किया गया, सरकार की बातों को ही सुना गया, समान काम के लिए समान वेतन की बातें जो है वो अब कोर्ट ने भी हम लोग कह दिया कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता, ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक स्कूल में जब हम लोग पढ़ा रहे हैं और उसी स्कूल में किसी टीचर को उसी काम के लिए हमसे ढाई गुना ज़्यादा मेहनताना मिल रहा है और हमें इतना कम मिल रहा है, ढाई गुना नहीं बल्कि कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं कि मैं बताऊँ आपको 5 गुना ज़्यादा मिल रहा है, तो इस स्थिति में हम कैसे काम करें।
अभी चुनाव का वक्त है और आप लोग अगर नाराज हैं तो दोनों सरकार से, तो चुनाव पे भी उसका असर पड़ेगा क्या है? आप लोग यहाँ चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं।
हाँ, हम लोग चुनाव ड्यूटी में तो व्यस्त हैं, लेकिन इसका असर ये 2 चरण का चुनाव जो बाकी है 12 और 19, इसका प्रभाव व्यापक पड़ेगा।
तो सरकार जो है वो विरोध कर रही थी और सरकार ये कह रही है कि उसके पास संसाधन नहीं है कि वो आपको उतना पैसा दे सके, तो उस तर्क पे ये फैसला जो है आया है, तो क्या मानते हैं कि राज्य सरकार को क्या रास्ता निकालना चाहिए था आप लोगों के लिए?
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। पैसा का रोना एक बहाना है, अगर पैसा वास्तव में पैसे की कमी है तो और सारे जितने विभाग या मंत्री महोदय लोग के माननीय लोग को उन लोगों के भी अपने TA DA में कटौती करना चाहिए, तब हम जानते कि वो लोग सचमुच में जो है इस राज्य के हितैषी हैं, इस देश के हितैषी हैं। अपने सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज बताइए, एक दिन के लिए जो चुनाव जीत जाता है उसको पूरा जीवन भर आजीवन उसको पेंशन मिलता है।
शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कुछ शिक्षकों से बात कर रहे थे प्रदीप कुमार।
BBC इंडिया बोल।
2019 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बार बार जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दी राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती। राहुल गांधी बोले, हार के डर से मोदी कर रहे हैं शहीदों का अपमान। राजीव गांधी को मुद्दा बनाने पर क्या सोचते हैं आप? इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 11 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800-117000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
श्रोताओं, आज शाम को इंडिया बोल में जरूर भाग लें। और अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां की 13 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में 19 मई को मतदान होना है। सत्ताधारी कांग्रेस को इस सूबे से और इसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहुत उम्मीदें हैं। मोदी लहर और अकाली पार्टी की सत्ता को वो पहले ही यहां पलट चुके हैं। हमारे सहयोगी अरविंद छाबड़ा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से खास बातचीत की और सबसे पहले यही सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी मोदी का विकल्प हो सकते हैं?
आज 70% हिंदुस्तान 40 साल की उम्र से कम है, इट्स यंग इंडिया, और यंग इंडिया राहुल जी के साथ रिलेट ज़्यादा कर सकता है उनके साथ, नॉट विथ मोदी। 5 साल की जो परफॉर्मेंस है मोदी जी की, कोई उससे खुश है? पहले दिन कह दिया कि हर हिंदुस्तानी के जेब में मैं 15 लाख डाल दूंगा, उसको मालूम था कि नहीं हो सकता, फिर झूठ क्यों बोला? राहुल जी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राहुल जी नेवर सेज रॉन्ग थिंग, जो है दिल की बात वही करते हैं, ऐसे ही लोग पसंद करते हैं इस बात।
पर लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में उन्हें स्ट्रांग लीडरशिप की कमी नजर आती है।
कोई पहलवानों का अखाड़ा है कि स्ट्रांग वहाँ कोई चीज वहाँ करनी है? गवर्नमेंट इज इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट, राहुल गांधी जी में कोई कमी है इसमें? एंड मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे।
पर उनका ये कहना है कि इतने सारे मुद्दे आए पिछले 5 सालों में, लेकिन लीडरशिप की वजह से वो मुद्दों को भुना नहीं पाए।
जब मैं पार्लियामेंट में जेटली को हरा के आया था, मैं भी वही साल डेढ़ साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, 2 साल, तो आई सीन कौन सा मुद्दा है जहाँ नहीं उठता था पार्लियामेंट में।
2019 के जो चुनाव, उन्हें आप कैसे देखें?
आई थिंक जीते पड़े हम, स्टेट की बात भी, नेशनल इश्यूज भी, और आज नेशनल इश्यूज बिकॉज इट्स नेशनल गवर्नमेंट, आज जिस तरीके से चल रहा है 100% आप देखेंगे, मैं ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, कि कांग्रेस पार्टी विल बी ऑन टॉप।
आप पॉलिटिकल लीडर के अलावा एक एक्स आर्मी मैन भी हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आर्मी को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल टोटल रॉन्ग, मोदी करा रहा है, मोदी की फौज है। क्या मोदी की फौज है? हिंदुस्तान की फौज है। मैं भी उसमें 10 साल रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तान की फौज को सर्विस किया, मोदी की फौज में तो नहीं मैं सर्विस की। ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी को, डिफेंस सर्विसेज आर टोटली आउट ऑफ इट।
जिस तरीके से राजीव गांधी को डिबेट में लाया गया, कैंपेन में लाया गया, प्रचार में लाया गया, उसके बारे में क्या?
जिस तरीके से मोदी लेके आया है डेरोगेटरी फैशन में, ये भ्रष्टाचारी की बातचीत कोई, दिस इज अनएक्सेप्टेबल और टोटली इन्होंने गलत बात की है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू टॉक अबाउट पीपल जो इस दुनिया में नहीं रहे।
उनका कहना है कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आज के लोग जान पाए कि क्या हुआ उन दिनों में।
क्या सारी दुनिया को मालूम है कि व्हाट इज ट्रांसपायर्ड, चाहे उसके बोफर का हिंदुस्तान को नहीं मालूम, लेकिन बोफर में कुछ मिला इनको। ऐसे ही कितने साल खींच के ले गए इस बोफर को, और उसके दौरान जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो आप जानते हो जो बोफर गन है इट्स 155 हाउइट्सर, और उसको हमारे पास कोई एमिनेशन नहीं था, हमारे को स्पेयर पार्ट्स ही थे। हम साउथ अफ्रीका गए, हम इसराइल गए, उनसे भीख मांग के वो लेके आए और एमिनेशन की डबल कॉस्ट पे हम लेके आए उधर उसके लिए।
वजह क्या लग रही है आपको, क्या स्ट्रेटजी?
या बिकॉज दिस इज अननेसेसरी, ये बिल्कुल फजूल की बातें करते हैं और फिर चोरी करते। राफेल के बारे में बात करने का क्या बुरी बात है बताओ मुझे? डजंट इंडिया वॉन्ट टू नो कि राफेल में कोई हेरा फेरी हुई है या नहीं खरीद में?
ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है नवीन नेगी। जी नवीन, बताएं क्या है ताज़ा खबरें आज की?
जी शाहिद, आज दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी समाचार पत्रों में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के 1984 में सिख दंगों पर दिए बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रोहतक में एक रैली में इस बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला किया था, तो सभी अखबारों ने अलग अलग सुर्खियाँ लगाई हैं। जनसत्ता ने लिखा है कि मोदी ने कहा कांग्रेस का चरित्र बताने वाला बयान है ये, कुछ कुछ ऐसी ही सुर्खी इंडियन एक्सप्रेस ने भी दी है। हिंदुस्तान लिखता है कि सिख दंगों पर सियासत गरमाई। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि हुआ तो हुआ पर हंगामा हुआ। ये सबसे जो है अलग तरह की
हमने रिपोर्ट में भी सुना जैसे मोदी।
इंडियन एक्सप्रेस ने जिस खबर को सबसे अधिक प्रमुखता से प्रकाशित किया है वह है उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्नाटक सरकार के उस कानून को बरकरार रखने की खबर जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में एवं वरिष्ठता क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दी है। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया। और एक तस्वीर का जिक्र कर दूं, इंडियन एक्सप्रेस में ही ये छपी है जिसमें कि पूर्वी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर को रोड शो करते हुए दिखाया गया। ये दो तस्वीरें हैं, एक में गंभीर जो है तस्वीर में है, दूसरी तस्वीर में कोई और शख्स है गाड़ी के ऊपर। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि गंभीर जो है प्रचार के लिए अपने किसी हमशक्ल का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं
गर्मी से बचने के लिए। इसके अलावा गंभीर का जो अभी मामला चल रहा है, जो आतिशी जो पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि ऐसे पर्चे बंटवाए जिनमें आपत्तिजनक बातें लिखी थी। इस पर भी उन्होंने कहा है NBT नवभारत टाइम्स में, मैं हेडिंग पढ़ सकता हूँ, उसमें लिखा है आरोप साबित हो गए तो फांसी लगा लूंगा। ये गंभीर कह रहे हैं।
जी गंभीर ये कह रहे हैं, और इससे पहले वो कह भी चुके हैं कि अगर ये आरोप साबित हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
जी अखबारों की बहुत बहुत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। श्रोताओं अब समय है विवेचना का। हाल ही में निरंजन मुखोपाध्याय की एक किताब आई है, द RSS आइकन्स ऑफ इंडियन राइट, जिसमें उन्होंने 11 हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं की जीवनी लिखी है। उनमें से एक नाम वीर सावरकर का है। सावरकर को कुछ लोग हीरो मानते हैं तो कुछ लोगों की नज़र में वो एक विवादित शख्सियत हैं। वीर सावरकर के इन्हीं पहलुओं पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल।
सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला।
ये हैं विनायक दामोदर सावरकर के कसीदे पढ़ते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य न रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। बहुचर्चित किताब द RSS आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले निलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं,
26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं। उसके ठीक एक दिन के बाद, जो कि सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी भी है, उस समय वो पार्लियामेंट जाते हैं और जाके उनकी पोर्ट्रेट को माला चढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत सावरकर का इस तरह से पोर्ट्रेट में जाके अपना रेस्पेक्ट पे करना, हमको मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे। हम नहीं भूल सकते कि गांधी असैसिनेशन केस में उनके खिलाफ केस चला था।
अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित किया गया था। 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर खासा शोध करने वाले वरिष्ठ पत्रकार निरंजन तकले बताते हैं।
नासिक के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जैक्सन की हत्या हुई थी और उस सिलसिले में उनके बड़े भाई को अरेस्ट किया गया था, गणेश दामोदर सावरकर को। और सावरकर ने जो लंदन से पिस्टल भेजे थे उनमें से एक पिस्तौल का इस्तेमाल करके कानेरे ने हत्या की थी जैक्सन की। वो उनके ऊपर जुर्म था, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, उसमें उनको अरेस्ट किया गया। एसएस मौर्या नाम की शिप से उनको लंदन से इंडिया ला रहे थे और पहले मार्सेलिस पोर्ट पर उन्होंने इंटीमेशन दिया था कि मेंटेनेंस के लिए ये शिप वहाँ पे रुकेगी। तो मार्सेलिस में जब एंकर हुई तो वहाँ पर पोर्ट होल जो है, जो शिप को साइड में होल्स उस वक्त होते थे, तो उस पोर्ट होल से उन्होंने जंप किया सावरकर ने।
आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं।
सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था, शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि बंदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया। उन्होंने पहले से ही शौचालय के अंदर के पोर्ट होल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो इसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर को पोर्ट होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षाकर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तैरकर किनारे पर पहुंच गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और एक मिनट में उन्होंने 450 मीटर का फासला तय किया। उनके दोनों तरफ ट्रामे और कारें दौड़ रही थीं। सावरकर करीब करीब नंगे थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला आता दिखाई दिया। वो उसके पास अंग्रेजी में जाकर बोले, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। और उनके पीछे पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, चोर चोर पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया।
इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आजादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की दो अलग अलग सजाएं सुनाई गईं और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेजा गया। उन्हें 698 कमरों की 13.5 × 7.5 फीट की जेल में कोठरी नंबर 52 में रखा गया। लेकिन यहां से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेलुलर जेल में उनके काटे 10 साल 9 महीनों ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया।
जब उनको अरेस्ट हुई तो अरेस्ट होने के बाद उनकी जब असलियत से उनका सामना हुआ, 11 जुलाई को वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने 29 अगस्त को अपना पहला मर्सी पिटीशन लिखा, केवल 2 महीने के भीतर। उसके बाद वो अलग अलग टाइम पर उन्होंने 6 मर्सी पिटीशन 9 सालों में वहां पर लिखे। उस जेल के जो रिकॉर्ड्स है वो ये बताते हैं कि हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी और फांसी का जो यार्ड है वो उनका जो कमरा था उसके बराबर नीचे ही है।
बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया कि ये उनकी रणनीति थी जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थीं। मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आखिर भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का विकल्प था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है। भगत सिंह को जितना मैंने पढ़ा है मैं कह सकता हूँ कि भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया उसी दिन उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि हमको फांसी का फंदा चूमना है। दूसरी तरफ वीर सावरकर वो चतुर क्रांतिकारी थे। मेरा दृष्टिकोण यह है कि वीर सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि हमको ये कहा जाएगा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। वो तो ये चाहते थे कि अगर बाहर चलेंगे तो हम जो करना चाहते हैं उसको कर सकें।
अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी हिंदुत्व, हु इज हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया।
हिंदुत्व को तो वो एक पॉलिटिकल आइडिया के तौर पे, एक तरह से पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उनकी वो किताब जो है, वो डिफाइन करते हैं कि इस देश का जो भी इंसान है जो वो हिंदू है मूलतः, और इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि या मातृभूमि और पुण्य भूमि यही है। तो इस परिभाषा में पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन पुण्य भूमि हिंदुओं का होगा, जैनियों का होगा, सिखों का होगा, बौद्ध का होगा, लेकिन मुसलमानों का तो पुण्य भूमि ये नहीं है, ईसाइयों का भी पुण्य भूमि ये नहीं है। तो उस डेफिनेशन में तो मुसलमान और ईसाई तो कभी इस देश के कभी नागरिक हो ही नहीं सकते। वो हो सकते हैं इनके हिसाब से अगर वो हिंदू बन जाए, हिंदू बन जाए, ये एक डाइकोटमी है जिसको कोई आज तक समझा नहीं पाया है कि आप कैसे हिंदू बन जाए लेकिन फिर भी आप अपने मतलब फेथ को परस्यू करते रहें।
1924 में उन्हें पुणे की यरवदा जेल से दो शर्तों के आधार पर छोड़ा गया, एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर से अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे।
वाइसरॉय लिनलिथगो के साथ उन्होंने राइटिंग में एग्रीमेंट किया था टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, आई विल स्पेंड माय रेस्ट ऑफ लाइफ इन अपोजिंग गांधी, कांग्रेस एंड मुस्लिम्स। अंग्रेज उनको हर महीना पेंशन दिया करते थे, 60 रुपए महीना उनको पेंशन मिलता था, तो ऐसे अंग्रेजों की कौन सी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलता था, और ये अकेले ऐसे थे।
सावरकर की छवि को उस समय बड़ा झटका लगा जब महात्मा गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।
पूरा संघ परिवार बहुत समय लग गया गांधी एसासिनेशन का जो स्मियर था उससे, उस दाग को हटाने में। सावरकर जेल में गए 1948 में, उसके बाद उनका एक्विटल हुआ, उसके बाद से 64 तक जिंदा रहे, लेकिन उस पीरियड में वो कभी उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके कोई बहुत ज़्यादा पब्लिकली उनसे कोई इंटरेक्ट भी नहीं करते थे, एक तरह से वो बिल्कुल मार्जिनलाइज पड़े रहे क्योंकि उनसे सस्पिशन कभी हटा ही नहीं। और फाइनली जब मांग होने के बाद जो कपूर कमीशन की रिपोर्ट आई उनके बाद में, तो उस रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो वो बोलते हैं कि उनको यकीन ही नहीं होता कि वो असैसिनेशन केस बगैर सावरकर के नॉलेज के हो सकता था। तो जो नीडल ऑफ सस्पिशन है वो तो सावरकर से कभी हटा ही नहीं।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। चेन्नई सुपर किंग्स ने कल विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में अपने अनुभव के दम पर युवा दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से 6 विकेट से बांट दी। चेन्नई के सामने जीत के लिए 148 रनों का लक्ष्य था जो उसने सलामी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी के 50 और शेन वाटसन के भी 50 रन की मदद से 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कल की जीत के साथ ही पिछली चैंपियन चेन्नई चैन से फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका सामना कल मुंबई इंडियंस से होगा। उधर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही भारतीय हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया ए को 3-0 से मात दी। भारत के सुमित कुमार जूनियर ने 2 और रुपिंदर पाल सिंह ने 1 गोल किया। ये भारत की लगातार दूसरी जीत रही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव भूमध्य सागर में ट्यूनिशिया के नजदीक पलट गई, जिसमें कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने 2 जंगी जहाजों को मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है। वेनेजुएला की सरकार ने ब्राजील और अरूबा के डच आइलैंड से लगने वाली सीमाओं को दोबारा खोलने की बात कही है। श्रीलंका सरकार ने घोषणा की है कि अब देश में मौजूद सभी मस्जिदों में जो उपदेश सुनाए जाते हैं उनकी एक कॉपी सरकार के पास जमा करवानी होगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन में मौजूद हूती विद्रोही देश के 3 प्रमुख बंदरगाहों से अपना कब्जा हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जेंटीना की पुलिस ने एक राजनेता और एक सरकारी कर्मचारी पर गोली चलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को ब्यूनो एरिस में कांग्रेस बिल्डिंग के बाहर राजनेता हेक्टर ओलिवरस और सरकारी कर्मचारी मिगुल जदौन पर गोली मारी गई थी। इस हमले में मिगुल की मौत हो गई थी जबकि हेक्टर अभी अस्पताल में हैं।
बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी। आप जरूर भाग लें इंडिया बोल में। तब तक ताजा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।